मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। दोस्तों, आज मुख्य विषय के रूप में हम लोग सिलेबस में हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा का जो विषय है, नेशनल सिक्योरिटी का, इसके संदर्भ में कुछ बातें करेंगे। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। इस बीच में 3 दिन का गैप रहा है। 3 दिन के दौरान कोई बहुत बड़ी ऐसी घटना नहीं हुई है जिसे हम मुख्य परीक्षा का एक प्रकार से यूं कह लीजिए कि आधार बना सकें, लेकिन फिर भी कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें रही हैं जो हमें जाननी चाहिए ताकि हमारा जो नॉलेज है वो अपडेट रह सके। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि लव जिहाद पर कानून बनाए गए हैं जिसमें 2 राज्यों के बारे में आप पहले से जानते हैं, उसमें एक है उत्तर प्रदेश और दूसरा है मध्य प्रदेश। इन दोनों ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया। लव जिहाद का मतलब आप जानते हैं कि धार्मिक लालच दे करके, धार्मिक बदलाव करके और आप किसी से विवाह करते हैं, लव जिहाद। ठीक है, फिर इसके अलग किस्म की परिभाषा है, ये मैंने बहुत ही सामान्य तरीके से आपको ये बात बताई है। अब इसमें एक राज्य और शामिल हो गया है और वह है गुजरात। उसने अभी एक विधेयक पारित किया है, धार्मिक स्वतंत्रता इन ब्रैकेट संशोधन ब्रैकेट क्लोज विधेयक 2021। इसे भी आप लव जिहाद के खिलाफ आप कह लीजिए पारित कानून कह सकते हैं। तो ये 3 स्टेट अभी हो गए हैं। बीच बीच में आपने इसके ऊपर लिखे गए लेख पढ़े होंगे, एडिटोरियल कमेंट्स भी आपने पढ़े होंगे। तो चूंकि अब अगर दूसरे राज्य भी पारित करते चले जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि अब इस विषय को जो हमारे विशेषज्ञ हैं इतना ज्यादा उठाएंगे, क्योंकि इस पर पहले बात हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के आपको अपडेट करते जाना है अगर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आता है तो। इस बीच में आपने एक और भी खबर पढ़ी और वो ये है कि रजनीकांत जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया, साउथ के बहुत ही महान अभिनेता रजनीकांत। रजनीकांत जी के बारे में जो सबसे बड़ी जो बात मुझे अपील करती है दोस्तों, शुरू में ये बस कंडक्टर थे, राइट, चलिए इसके बाद में फिर आज वो इतने बड़े अभिनेता बन गए हैं। और भी इस तरह के बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत बहुत ही विनम्र या और बहुत ही नीचे से शुरुआत की और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे। मेरे लिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बस कंडक्टर बन गया है तो पूरी जीवन भर अब वो इसी के लिए अभिशप्त है या कुछ बड़ा काम नहीं कर सकता, नॉट एट ऑल। अगर उसके अंदर प्रतिभा है और महत्वाकांक्षाएं हैं और उसके लिए कर्म कर रहा है तो वो डेफिनेटली ऊंचाइयों को पा लेगा। रजनीकांत कम से कम इस बात को प्रमाणित करते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आज भी उनकी जीवन शैली बिल्कुल इस सामान्य व्यक्ति की जीवन शैली है। लेकिन इससे भी जो बड़ी बात है वो ये है कि जब ये कंडक्टर थे तो उनके 1-2 मित्र हुआ करते थे, वो आज भी लगभग कंडक्टर की स्थिति में है। कहा जाता है कि रजनीकांत हर साल कुछ दिन अपने इस दोस्त के घर आकर के और बिल्कुल सामान्य तरीके से रह करके उसके साथ वक्त गुजारते हैं। और ये बात पढ़ी भी मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ये बात उन्होंने मुझे बताई है जो रजनीकांत को व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये है रजनीकांत। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। दादा साहब फाल्के के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर आपने रंग रसिया फिल्म देखी हो तो उसमें दादा साहब फाल्के का जिक्र है, जिन्होंने हिंदुस्तान में सिनेमा की शुरुआत की और हरिश्चंद्र जैसी फिल्में बनाई, मतलब उन्हें जनक माना जाता है भारतीय सिनेमा का। उनके नाम पर, उनके सम्मान में इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई है। और ये जो पुरस्कार है ये जीवन भर की उपलब्धियों पर दिया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति ने सिनेमा के क्षेत्र में कोई ऐसा योगदान किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान किया है, तो उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। हालांकि राशि इसमें जो दी जाती है वो बहुत कम है, न बताना ही ज्यादा बेहतर होगा। और अच्छी बात है क्योंकि राशि से इसका कोई संबंध होना भी नहीं चाहिए, यह सम्मान है और सम्मान अपने आप में सबसे बड़ी निधि हुआ करती है। दोस्तों, इस बीच में एक और भी इंटरेस्टिंग घटना हुई है और वो ये है कि लघु बचत पर हम लोगों ने बात की थी और उसमें मैंने ध्यान होगा कि ये बताया था कि किस तरह से ये लघु बचत पर जो ब्याज दरें कम की गई हैं ये एक प्रकार से प्रगतिशील कदम नहीं है। इससे जो हमारी बचत है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी और ख़ासकर जो मध्यम वर्ग है, निम्न मध्यम वर्ग और यहाँ तक कि जो निम्न वर्ग है उस पर इसका बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। ये बात मैंने कही थी और आप देखिए कि कुछ ऐसी बातें होती हैं कि अगले ही दिन सरकार ने अपनी इस घोषणा को वापस ले लिया। और वाकई सच पूछे तो मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था कि सरकार ने कैसे यह निर्णय लिया है। मैंने ये बात अपने ऑडियो में आपसे चर्चा नहीं की थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि अभी कुछ राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और उस चुनाव के दौरान, जबकि अभी वोटिंग होनी है, सरकार कैसे इस तरह के निर्णय ले सकती है। खैर चलिए, अच्छा हुआ कि सरकार ने अपने उस निर्णय को वापस ले लिया। तो लेकिन आप ये मान करके चलिएगा कि जो लघु बचत का जो टॉपिक है, इसकी वजह से खत्म नहीं हो गया, वो अभी भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। और सच पूछे तो यही प्रश्न बनता है कि सरकार क्यों लघु बचतों पर ब्याज की दर को कम नहीं करना चाहती, जबकि उसे ऐसा करना चाहिए। तो ये टॉपिक अपने आप में इम्पॉर्टेंट बना रहेगा। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वह है राष्ट्रीय सुरक्षा का टॉपिक। मुझसे बहुत से स्टूडेंट ईमेल के जरिए पूछते हैं, और सच पूछिए तो इस प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए बहुत कठिन होता है। वो पूछते हैं कि सर, क्या मैं अपने घर पर रहकर सिविल सर्विस की तैयारी कर सकता हूं? कुछ लोग पूछते हैं कि क्या कोचिंग लेना अनिवार्य है? मतलब इस तरह के अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत धर्म संकट में डाल देते हैं ऐसे प्रश्न मुझे, क्यों, इसका क्या आप स्ट्रेट आंसर देंगे? सोच करके देखिए कि मैं आपको नहीं जानता, आपकी क्षमताओं को नहीं जानता, आपकी पृष्ठभूमि को नहीं जानता, तो मैं कैसे बता दूं कि आप में ऐसी क्षमता है कि आप खुद भी इसकी तैयारी कर सकते हैं? क्षमता होनी चाहिए, तो मुझे कैसे दिखाई देगी? आप सोचेंगे कि मैं अपना पूरा का पूरा 4-5 पेज का बैकग्राउंड आपको भेज देता हूं और आप उसके आधार पर बता दीजिए, तो नॉट एट ऑल, वो भी संभव नहीं है बताना। हाँ, बातचीत करने के बाद बताया जा सकता है, और ये भी बातचीत एक लंबी बातचीत होनी चाहिए, एक सार्थक बातचीत होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि इस बात का राष्ट्रीय सुरक्षा से क्या संबंध है? दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंध है। राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंध यह है कि जब आप सिलेबस में कोई विषय पढ़ते हैं, जैसे आप सिलेबस में पढ़ते हैं नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी आपका टाइटल है, पेपर में दिया हुआ है नेशनल सिक्योरिटी। इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर फिर 5 पॉइंट्स दिए हुए, मतलब उसकी डिटेल्स दी हुई है। क्या आप उस डिटेल्स के आधार पर इसके सिलेबस को समझ सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि आप समझ सकते हैं, या कोई भी स्टूडेंट अपनी तरफ से समझ सकता है, बशर्ते कि इस विषय को उसने ग्रेजुएशन में पढ़ा न हो, या फिर यह है कि उसके पास एग्जाम देने का कुछ अनुभव हो गया हो, या फिर यह है कि वो अपने आप में इतना इंटेलिजेंट है कि सिविल सर्विस के बारे में जो किताबें लिखी गई हैं उसमें वह नेशनल सिक्योरिटी पर लिखी गई किताब उठाता है, उसे पढ़ता है, उसे समझने की कोशिश करता है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाता है, देखता है कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनके क्या एंगल्स हैं, और उसके आधार पर फिर वो अपना अलग से एक सिलेबस तैयार करता है कि अच्छा, नेशनल सिक्योरिटी के अंतर्गत मुझे ये 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 कवर करना है। हो सकता है कि उतना इंटेलिजेंट हो, और ऐसे लोग होते भी हैं, लेकिन सब तो ऐसे नहीं होते, इसीलिए दिक्कत होती है यह बताने में कि आप अपने घर पर बैठकर तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे कल बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना छत्तीसगढ़ में घटी है, वो है नक्सलियों ने हमारे नौजवानों पर अटैक किया और हमारे 23 जवान शहीद हो गए। बहुत ही दुखद घटना, इससे पहले भी इस तरह की दुखद घटनाएं घटित हो चुकी हैं। तो मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सभी की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, इन जवानों के घर वालों को इस इतने बड़े दुख को सहन करने के लिए बहुत बड़ी शक्ति दे। छोटी मोटी शक्ति से यह दुख सहन नहीं किया जा सकता, बहुत बड़ा दुख है। तो दोस्तों, ये घटना घटी, नक्सली घटना है, अखबारों में भी इसे लिखा गया है, नक्सलवाद। जब आप अपना सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में कहीं भी आपको अलग से नक्सलवाद शब्द दिखाई नहीं देगा कि आपको इस पर तैयारी करनी है, ठीक है। फिर आप जब सुरक्षा की बात करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी, जब आप और इसके डिटेल्स पर जाएंगे कि नेशनल सिक्योरिटी के रूप में और कौन कौन से हैं, तो अब आप इसका पता कैसे लगा पाएंगे? इसमें बहुत सारे आते हैं, आतंकवाद जो जिसे हम जम्मू कश्मीर में देखते हैं, अब तो चलिए इस पर बहुत ज्यादा नियंत्रण हमने पा लिया है, वहां अब खासकर सैलानियों की संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, तो आपको आतंकवाद के बारे में भी पढ़ना है लेकिन फोकस्ड तरीके से पढ़ना है, आपको उग्रवाद के बारे में भी पढ़ना है क्योंकि उग्रवादी गतिविधियां हम अक्सर अपने नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों में देखते रहते हैं, नक्सलवाद आपको पढ़ना ही पढ़ना है जो आप देख रहे हैं, और इस तरीके से पूरा का पूरा नक्सलवाद का एक कॉरिडोर बना हुआ है। अगर आप ईस्ट साइड में देखेंगे तो एक पूरा का पूरा एक रेड कॉरिडोर सा बना हुआ है जिसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड ये सब राज्य आते हैं। अभी तो लगभग 9-10 राज्य इससे बुरी तरह से प्रभावित हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा इस किस्म की दुर्भाग्यजनक घटनाएं घटित हो रही हैं। फिर आपको बाकायदे सांप्रदायिकता को भी देखना है क्योंकि सांप्रदायिकता भी कहीं ना कहीं हमारे नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट देती है, खासकर जो धार्मिक कट्टरता है उसे हम इसके तहत ले सकते हैं, कहीं ना कहीं जातिवाद से भी हमारी सुरक्षा को कुछ ना कुछ चुनौती तो मिल ही जाती है क्योंकि जातिवादी हिंसाएं भी होती हैं, और खासकर जो माओवादी जो घटनाएं घटित होती हैं बिहार की तरफ, झारखंड की तरफ, वो एक प्रकार से जातीय हिंसा ही है। नक्सलवाद के लिए एक और शब्द आपको मिलता है वामपंथी उग्रवाद, तो यह भी आपको मालूम होना चाहिए कि वामपंथी उग्रवाद क्यों है, कैसे है। तो दोस्तों अब आप देखिए कि केवल नेशनल सिक्योरिटी के बारे में आप थोड़ा सा ले रहे हैं और केवल मेंशन किया हुआ है आपके सिलेबस में कि लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, बस केवल यह शब्द दिया हुआ है। अब आपको एक्सट्रीमिज्म को समझना होगा कि कैसे है। इसके बाद फिर नेक्स्ट दिया हुआ है कि रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, ये भी सिक्योरिटी से संबंधित है, ये भी जो ऊपर अभी मैंने जो आपको बताया है कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा हुआ है कि हमारी जो आंतरिक सुरक्षा है उस सुरक्षा को कैसे बकायदे जो बाहर के जो लोग हैं और जो हमारे अपने आंतरिक क्षेत्र के लोग हैं, यानी कि हमारे अपने ही देश के लोग हैं, कैसे उनसे चुनौतियां मिल रही हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है सिलेबस को समझ पाना। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और मेंस को भी क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, तो आपकी सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए, शुरुआत इस बात से होनी चाहिए कि मुझे इसके सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। फ्रेंड्स मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ और इन्हीं में से चार दोस्तों के नाम हैं अंकित राज मुंबई से, योगिनी पंड्या, भास्कर शर्मा और नीलेश चौधरी। आप सबका बहुत बहुत आभार और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।